Hare Krishna. Hare Krishna.
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Guru Dev, Jaya Guru Dev, Jaya Guru Dev, Jaya Srila Bhagavat Pad. Gauranitai, Gauranitai. Gauranitai, Jaya Gauranitai. Gauranitai, Gauranitai. Gauranitai, Jaya Gauranitai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी वनचारी यमुना तीर 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 वनचारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यमुना तीर वनचारी वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी जन वल्लभ गिरिवर धारी गिरिवर धारी गिरिवर धारी गिरिवर धारी जन वल्लभ गिरिवर धारी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರನಾರಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರನಾರಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರನಾರಿ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ ಜಯ ಜಯ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ ಜಯ ಜಯ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ ಜಯ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧೆ ಜಯ ಬಲದೇವ ಜಯ ಸುಭದ್ರ ಗೌರನಿಕಾಯಿ 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 ಜಯ ಗೌರನಿಕಾಯಿ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಯ ಜಯ ಗುರುದೇವ 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 ಜಯ ಜಯ ಭಗವತ್ಪಾದ ಗುರುದೇವ ಹರಿ ಗೋ ಹರಿ ಗೋ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗೌರಾಂಗ ಗಂಧರ್ವಿಕಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧಾರಿ ಜಿಕಿ ಜಯ ನಿತ್ರಿಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟು ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಶತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದಕಿ ಪ್ರೇಮ ಸೆ ಕಹೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಶ್ರೀ ಗೌರ್ಭಕ್ತವೃಂದಕಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಕಿ ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ನಿತಾಯ ಗೌರ್ ಹರಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಾಮುದೀರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಾಗವತೇಯುತ್ತಂ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ದಶಮ ಸ್ಕಂಧ ದ್ವಾದಶ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ದ್ವಾದಶ ಬಾರ
अघासुर का वध नामक 12वां अध्याय श्लोक संख्या 12।
यत् पादपांशु बहु जन्म कृच्छ्रातः धृत आत्मभिः योगिभिः अपि अलभ्य स एव यद्दृक् विषय स्वयं स्थित किं वर्णयते दिष्टम् अतः व्रज औकसम् यत् पादपांशुर्बहुजन्म कृच्छ्रितो यत् पादपांशुर्बहुजन्म कृच्छ्रितो धृतात्मभिर्योगिभिराप्यलभ्य धृतात्मभिर्योगिभिराप्यलभ्य स एव यद्दृग्विषय स्वयं स्थित स एव यद्दृग्विषय स्वयं स्थित किं वर्णयते दृष्टमतो ब्रज औकसाम् किं वर्णयते दृष्टमतो ब्रज कौसाम् यत् पादपांशुर्बहुजन्म कृच्छ्रितो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्य स एव यद्दृग्विषय स्वयं स्थितः किं वर्णयते दृष्टमतो व्रजौकसाम्
मताओं में से जिसके पाद पांसु चरण कमलों की धूल बहु जन्म अनेक जन्मों में कृच्छ्रिता योग ध्यान आदि के लिए कठिन तपस्या करने से धृत आत्म भी मन को वश में रखने वालों के द्वारा योगी भी ऐसे योगियों द्वारा ज्ञान योगी राजयोगी ध्यान योगी आदि अपि निसंदेह अलभ्य प्राप्त न किया जा सकने वाली स भगवान एव निसंदेह यत् दृक् विषय साक्षात दर्शन की वस्तु बन गया है स्वयं स्वयं स्थित उनके समक्ष उपस्थित किम क्या वर्णयते वर्णन किया जा सकता है दिष्टम भाग्य के विषय में अतः इसलिए व्रज औकसाम व्रज भूमि वृंदावन के वासियों के अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज के द्वारा शिल प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है भले ही योगी अनेक जन्मों तक यम नियम आसन तथा प्राणायाम द्वारा जिनमें से कोई भी सरलता से नहीं किया जा सकता है कठोर से कठोर तपस्या करें फिर भी समय आने पर जब इन योगियों को मन पर नियंत्रण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो भी वे भगवान के चरण कमलों की धूल के एक कण तक का आस्वादन नहीं कर सकते तो भला ब्रजभूमि वृंदावन के निवासियों के महाभाग्य के विषय में क्या कहा जाए जिनके साथ साथ साक्षात भगवान रहें और जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया तात्पर्य हम वृंदावन वासियों के महाभाग्य का केवल अनुमान लगा सकते हैं यह वर्णन कर पाना असंभव है कि किस तरह अनेक अनेक जन्मों के पुण्यों के परिणाम स्वरूप वे इतने भाग्यशाली बन सके ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्मों जन्म तक जो कठोर तपस्या करते हैं ऐसे जो योगी हैं जिन्होंने यम नियम प्राणायाम आदि के द्वारा अनेक वर्षों तक या फिर अनेक जन्मों तक ये कठोर तपस्या और प्रयास करके
जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लिया है अनेक जन्मों तक। हम सबकी परिस्थिति क्या है, अभी कुछ वर्षों से चार नियम का पालन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हम सोचते हैं भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। कभी कभी हम लोग जब अंदर भीतर में भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तो कभी कभी हम लोग आपस में बात करते थे, तो कुंभदास प्रभु बोलते थे जन्माष्टमी कभी गिरधारी हाँ बोला, हाँ बोला तो नहीं अभी तक, तो बोले अगर हाँ कहे तो मेरा नाम भी दे देना। तो मैं कह रहा था भाई आपको भी हाँ कहे तो मेरा नाम बोल देना कि मैं भी हूं लाइन में पीछे। तो यहां पर बताया गया है कि मन और इंद्रियों को कहीं दीर्घ काल से, वर्षों से जिन्होंने वश में किया है, मन और इंद्रियों को वश में करना एक बिल्कुल साधारण साधारण बात सोचें, बिल्कुल साधारण बात, छोटी सी बात अगर सोचें, तो हम लोग मंदिर में आते हैं, कुछ वर्ष साधना करते हैं, साधना सीखते हैं, भजन सीखते हैं, भजन करते हैं, ब्रह्मचारी दीक्षा लेते हैं, गृहस्थी दीक्षा लेते हैं, कुछ वर्ष अच्छे बीतते हैं, पर मान लीजिए उसके दरमियान यदि कभी कोई यूथ फेस्टिवल आ जाए, उपासना साधना आराधना ऐसे, और पता चले कि आज चाउमीन है, आइसक्रीम है, तो शाम के प्रसादम हॉल में संख्या कम हो जाएगी, या फिर कम खाया जाएगा दाल चावल रोटी सब्जी। होता है ना ऐसा, होता है कि नहीं होता है? होता है। बोले दो रोटी कम खाना, फिर रात में चाउमीन लेंगे लेके आएंगे। क्या है, कभी कभी भक्त लोग टेस्ट करना चाहते हैं। इतना आसान नहीं है मन और इंद्रियों को वश में करना। वो तो बाहर के जो बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ते हैं, बाहर ही रहते हैं, बाहर ही घूमते हैं, तो उसको उनको आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं, चाउमीन पाव भाजी। ठीक है, खा सकते हैं, कोई विरोध नहीं है, अगर बहुत मन करे तो कह देना चाहिए किचन में कि भक्तों के लिए आज ये बनाऊं, पर यूथ फेस्टिवल में घुस के दो कटोरा लेके नहीं आना चाहिए। अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं, सुनते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, तब जाके अब नहीं, अब चाउमीन नहीं खाना है, वो सब यूथ फेस्टिवल के लिए, अब नहीं खाना। कुछ है उच्चतर अधिकारी ब्रह्मचारी नहीं जाते हैं। तो जिन्होंने कृष्ण प्रसाद का आस्वादन लिया है और कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, तो भी हम सबका व्यक्तिगत अनुभव यह है कि पर्याप्त मात्रा में मन और इंद्रियां वशीभूत नहीं है। तो जो लोग बाहर केवल कृष्ण भक्त, कृष्ण कथा, कृष्ण दर्शन, कृष्ण प्रसाद के बगैर जो लोग बाहर प्रयास कर रहे हैं, वन में, जंगल में बैठ के, या घर में, या कमरे में, या गुफा में, या कोई बड़े आश्रम में, ऋषिकेश वृंदावन कहीं बनाकर, और ध्यान कर रहे हैं, यम नियम प्राणायाम, यम का अर्थ होता है कि जो योग साधना करने की जो प्रक्रिया है, कि पद्मासन में बैठकर मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रख के बिल्कुल, और दोनों नेत्रों को अर्ध खुला रख के, नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करके, जो योग की जो प्रक्रिया है यम, या कोई सोचेगा मैं पेड़ में उल्टा लटक जाऊं, कोई सोचेगा मैं एक पैर पे खड़ा रह के ऐसे एक तपस्या करूं, ये होता है यम प्रक्रिया, योग प्रक्रिया। नियम, नियम क्या है? नियम यह है कि मैं केवल फलाहार करूंगा, या मैं केवल पेड़ से नीचे सूखे गिरे हुए पत्ते ही खा के जीवन बिताऊंगा, या मैं केवल पानी पीकर जीऊंगा, या फिर मैं केवल हवा खा के जीऊंगा, ऐसे बहुत प्रकार के नियम होते हैं। रामायण में वर्णन आता है ऐसे 21 प्रकार के योगी होते हैं। अयोध्या कांड में छठे अध्याय में बालकांड अयोध्या कांड के चित्रकूट में जब भगवान श्री राम निवास करने लगे वनवास के दरमियान, पहले 11 वर्ष चित्रकूट में रहे श्री श्री राधा गिरधारी जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। प्रभु जी थोड़ा सा घंटी का प्रयोग कम करें प्लीज। तो रामायण में भी वर्णन आता है, तो जब प्रभु श्री रामचंद्र बैठे थे चित्रकूट में, तो 21 प्रकार के योगी उनको मिलने गए, 21 प्रकार के साधु, कि भाई हमें राक्षसों के उपद्रव से बचाइए, रावण के उपद्रव से बचाइए आदि। तो उसमें वो 21 प्रकार के साधुओं का वर्णन है। कोई केवल हवा खा के जीते हैं, कोई केवल जमीन पे लेटते हैं और आकाश को ही चद्दर बना के ऐसे सोते हैं, कोई केवल वायु भक्षण करता है, कोई केवल जल पीता है, कोई ऊर्ध्ववासी ऋषि हैं जो ऊंचे पर्वत पर रहते हैं। ऐसे अलग अलग ऋषियों की कैटेगरी है, उनका नाम दिया गया है कि किस कैटेगरी के ऋषि मुनि हैं। तो वो आदि जो है सब यम नियम प्राणायाम, अपने श्वासोश्वास की प्रक्रिया को भी जो नियमित कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं ऐसे। और फिर आगे यहां पर आता है ज्ञान योगी, राजयोगी और ध्यान योगी, ऐसे 3 प्रकार के योगियों का वर्णन हुआ है। तो ज्ञान योगी कौन है? ज्ञान योगी अर्थात ब्रह्मचारी, अथवा ये पीले कपड़े सफेद कपड़े न्यू भक्त न्यू डिवोटीज, ज्ञान योगी वो जानना चाहते हैं भगवान कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्यों यहां आया हूं, कहां जाऊंगा, क्यों दुख भोग रहा हूं, क्यों सुख प्राप्त हो रहा है, कितना सुख अधिक प्राप्त हो जाए, ये जो सब जिज्ञासा है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्मा। तो ये जो है इसे कहते हैं ज्ञान योगी ब्रह्मचारी, क्योंकि यदि वो गृहस्थियों के विषय भोगों को भोगने जाएगा तो उसका ज्ञान कहां प्राप्त होगा, फिर उसको तो एक ज्ञान प्राप्त करना होगा, पैसे कहां से मिले ज्यादा क्योंकि विषय भोग करना है, परिवार पालन करना है, तो पैसा कहां से आएगा, तो वो कहां जान पाएगा, तो वो ज्ञान योगी नहीं है। भले ही वो 4 किताब पढ़ लें पर वो ज्ञान योगी नहीं है। योग का अर्थ ये नहीं है कि पद्मासन पद्मासन शीर्षासन और पश्चिमोत्तानासन चक्रासन डोलासन, ये आसन नहीं है, ये तो एक्सरसाइज है, कसरत है। योग का अर्थ होता है संबंध जोड़ना, कनेक्शन जोड़ना, उसे कहते हैं योग। तो जो ज्ञान मार्ग से अपने आप को जोड़ लेता है, जो ज्ञान मार्ग से अपने आप को जोड़ लेता है, केवल ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान प्राप्ति करना ही उसके जीवन का ध्येय है, उसके जीवन की दिनचर्या है, उसके लक्ष्य है, उसे कहते हैं ज्ञान योगी। एक होता है राजयोगी, जैसे हमारे रामदेव बाबा, जो योगासन के द्वारा राजयोग, बहुत सारे उसके कुछ प्रकार हैं। राजयोगियों का अर्थ है जैसे योगासन सिखाते हैं सारे विश्व को स्वस्थ रहना आदि। एक अर्थ यह भी होता है कि कोई योगी पुरुष यदि राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता है पूरी प्रजा के कल्याण के लिए, वो राजयोगी, जैसे राजपुरोहित राजयोगी। तो जो सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ योग आसन जानते हैं, जिसके द्वारा हर रोग को निर्मूल कर सकता है, आयु को बढ़ा सकते हैं, ऐसे जो योगी हैं वो राजयोगी। और ध्यान योगी, ये ज्ञान योगी राजयोगी की जो सिद्धि अवस्था है, जो समाधि में रह सकता है, जो समाधि में लीन हो सकता है, उसे कहते हैं ध्यान योगी। जो ध्यान मार्ग के द्वारा भगवान को जानना चाहता है, प्रभु के ऊपर चिंतन करना चाहता है। पर उनमें भी कुछ विभाग हैं, वो भगवान की दिव्य ज्योति पे केंद्रित होता है या भगवान के चतुर्भुज नारायण के रूप पे ध्यान केंद्र करता है, या फिर उसको पता ही नहीं है कि ध्यान किस पे करना है, बस वो ऐसे ही ध्यान में बैठ जाता है। तो ऐसे ये योगियों का प्रकार है। तो यम नियम प्राणायाम, जो श्वासोश्वास को नियमन करते हैं, रेचक कुंभक और पूरक, जो इस प्रकार से रेचक कुंभक और पूरक इन श्वासोश्वास के द्वारा, श्वास उच्छ्वास, टेकिंग इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, श्वास उच्छ्वास प्राण अपान समायुक्ता, तो जो प्राण अपान को समान कर सकता है या उनको कंट्रोल कर सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा रोक सकता है, जो कुंभक को बढ़ाता है, कुंभक रोचक, फिर उसके बाद में कुंभक अर्थात सांस को रोकना है और पूरक सांस छोड़ देना है, तो जो कुंभक को बढ़ाता है उसका आयुष्य बढ़ता है, उसका तेज बढ़ता है, उसका ओजस बढ़ता है, वो दूसरा विषय है। तो ऐसे योगी, तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ये ब्रजवासियों के भाग्य की क्या बात करें, जो ऐसे योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, जिन्होंने यम नियम प्राणायाम के द्वारा अपने इंद्रिय और मन को वश में कर लिया है, वो भगवान के चरण कमलों की धूली का एक कण का भी आस्वादन नहीं कर सकते हैं। तो उसका वर्णन आता है भगवद गीता में कि ऐसे जो योगी हैं, ऐसे तमाम प्रकार के जो योगी हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे जो योगी हैं, अनेक अनेक जन्मों के बाद, अनेक अनेक जन्मों में कठोर तपस्या, प्रचुर ज्ञान और ध्यान किया है, ऐसे योगियों को अनेक जन्मों के अंत के बाद ये पता चलता है कि ये सबके पीछे वासुदेव से कृष्ण का हाथ है, वासुदेव कृष्ण ही सर्वे सर्वा है और वासुदेव कृष्ण का ही सब कुछ है, तो चलो मैं उनकी शरण में जाऊं। इसलिए कहा चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चतुर्थ शरण, कि ऐसे जो भगवान की शरण में जो चारों प्रकार के योगी हैं, जो जाने का प्रयास करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं वो पुण्यवान से श्रेष्ठ हैं, इसलिए कहते हैं सुकृतिवान। चतुर्विदा भजन्ते माम, जो मेरा भजन करते हैं, चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, हे अर्जुन वे लोग सुकृतिवान, क्योंकि अभी अनेक जन्मों के पश्चात उनको ज्ञान हुआ है, सब कुछ कृष्ण का है, तो चलो पता चला कृष्ण का है, चलो कृष्ण की शरण करें। कैसे? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शरभ, क्योंकि कर्मों के नियम के अधीन तो सब कोई है, जब तक मोक्ष नहीं होता तो कर्मों के अधीन देह धर्म लागू होता है, भूख प्यास थकान निंद्रा इच्छाएं ये सब तो होता ही है, तो वो बीच में तो व्यवधान उत्पन्न करता ही है ना? तो कृष्ण कहते हैं सुकृतिनो अर्जुन। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं ऐसे जो कृष्ण हैं, कृष्ण जो हैं ऐसे, उसको कैसे समझे हम कि ब्रजवासियों का भाग्य क्या है, क्या भाग्य है ब्रजवासियों, तो कुछ समझे हम भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में संपूर्ण सृष्टि का, आत्मा का, जीव का गुण, दैवी आसुरी स्वभाव, इन सभी बातों का वर्णन करते करते अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि सब कुछ त्याग करके मेरी एकमात्र की शरण में आ जाए, मैं तुम्हें सभी पापों से छुटकारा दिलाकर मुक्ति प्रदान करूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, कि भगवान की संपूर्ण शरणागत होने तक जीव से पाप होते ही रहता है, और संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं है भक्ति के अलावा, ऐसा कोई उपाय नहीं है, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, दान मार्ग, यज्ञ मार्ग, तपस्या मार्ग, कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसके द्वारा जीव अपने संपूर्ण पापों को निर्मूलन कर सके, उसको खत्म कर सके। जीव में क्षमता ही नहीं है, जीव में क्षमता है पाप बढ़ा सके, पाप खत्म कर सके वो जीव की क्षमता ही नहीं। तो अंत में भगवान श्री कृष्ण को अंत में 15-20-25 टका डिस्काउंट देना ही पड़ता है। अब बहुत हो गया, चलो अब ये नहीं कर पाएगा, बहुत भजन किया, बहुत कष्ट किया, डिस्काउंट दे दो इसको, 10-15-20 टका डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन हमें 80-85% तो जाना ही पड़ेगा, 80-85% हमारी पाप वृत्तियों को खत्म करना ही पड़ेगा। जब इतनी सिंसियरिटी देखेंगे, इतनी गंभीरता देखेंगे हमारे में, तब श्री कृष्ण जो है माफ करेंगे। इसलिए कृष्ण ने कहा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, क्योंकि कृष्ण को पता है, नहीं तो कृष्ण नहीं कह सकते थे पहले पाप खत्म करो, पुण्य खत्म करो, मेरी शरण में आओ, पहले एकदम न्यूट्रल बन जाओ फिर मेरी शरण करो। नहीं, कृष्ण ने कहा माम एकम शरण मृजा, तू कुछ मत कर, कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे एकमात्र शरण में आ जा बस, फिर मैं देखता हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो, जन्मों जन्म के सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। अब जीव का उन्नति हो रहा है ना, अब आगे बढ़ो और आगे समझे कृष्ण की शक्तियों को, कृष्ण के विषयों को। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस विषय को, बहुत सुंदर विषय है कि कृष्ण चरण कमल की धूली का एक कण का आस्वादन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, सब कुछ है, मन इंद्रियां वश में, फिर भी नहीं कर सकते। और ब्रजवासियों के साथ कन्हैया खेल रही हो है, है भैया, बड़ो बालक बन के पौगड़ अवस्था में खेल रही हो कन्हैया, तो ये क्यों नहीं हो रहा है इनका? क्यों ऐसे बताया गया तात्पर्य में? क्योंकि पद्म पुराण में बताया गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवो न मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एव स्फुरत। इसलिए, अतः इसलिए, इसलिए कहता हूं, पद्म पुराण कहता है अतः श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण का नाम आदि, तो आदि क्या है, वगैरह वगैरह क्या है, आदि मतलब वगैरह वगैरह, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा हम कभी न ग्रहण कर सकते हैं, न समझ सकते हैं, न हजम कर सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, तो नाम आदि क्या है, तो कृष्ण का नाम रूप गुण लीला स्वरूप धाम परिकर व्यास आदि है ना, कृष्ण का नाम रूप गुण स्वरूप लीला धाम परिकर व्यास आदि, ये हम नहीं समझ सकते हैं। हमारी इन भौतिक त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवो न मुखे ही जिह्वा दो, तो किसके द्वारा, बोले पहले सब कुछ छोड़ करके कृष्ण की शरण में आ जाओ और फिर कृष्ण और कृष्ण भक्तों की सेवा करो, साधु संगति करो, साधु सेवा करो, गौ सेवा करो, तो कृष्ण का नाम रूप गुण लीला धाम व्यास परिकर आदि समझ में आएगा। इसके बगैर नहीं, करोड़ों नाम जप लो, जब तक आप साधु संगति साधु सेवा गौ सेवा नहीं करोगे करोड़ों नाम जप लो समझ में नहीं आएगा। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, जप में मन क्यों नहीं लगता? तंदेर चरण सेवी भक्त सनिवास जनमे जनमे होए एई अविनाश तासबार पदरेणु मोर पंचग्रास। तो साधु संगति के बगैर नहीं हो सकता। तो इसलिए अब साधु संगति होने लगी, ज्ञान बढ़ने लगा, भक्ति बढ़ने लगी, वैराग्य बढ़ने लगा, तो पता चलता है ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं एको अपयसो रचयिन्तुं जगदंड कोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयायदंतः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। एको अपयसो रचयिन्तुं जगदंड कोटिं, एक अकेला वो जो पुरुष है वो हजारों करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांडों की रचना करता है। अब भगवान के विषय में समझ लो कि व्रजवासियों का भाग्य समझना है तो पहले थोड़ा तो भगवान को समझना पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझेंगे। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्रजवासियों के भाग्य की क्या व्याख्या करें, तो कहते जानते वो किसके साथ रहते हैं, उनकी क्षमता क्या है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, क्या क्षमता है उनकी, क्या शक्ति है, पहले जानिए तो पता चलेगा कि क्या ब्रजवासियों के भाग्य की बात की जा रही है। तो अर्जुन भी कहते हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। भगवान आप कैसे हैं, परम ब्रह्म, आपसे परे कोई ब्रह्म है ही नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग सब खत्म कर दिया अर्जुन ने पहले ही शब्द में। परम ब्रह्म परम धामम, तुरंत धाम किसका हो सकता है, जो पुरुष है, जो साकार है, जो सगुण है, निर्गुण निराकार होता है उसका धाम नहीं होता है। तो पहले शब्द में ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग खत्म कर दिया। परम ब्रह्म, जो भी ब्रह्म ब्रह्म की बातें हो रही है, बोले वो पर ब्रह्म आप ही है। परम धामम, आपका धाम परम है, गोलोक धाम निज धाम तले चतस्य देवी महेश हरि धाम शुतेषु तेषु ते प्रभाव निच या विहितास्य येन गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। मैंने वो छोड़ा नहीं है, एको अपयसो रचयन तुम, तीन ट्रैक पे बात चलेगी, 1 2 3। ब्रह्मचारियों को ऐसे ट्रेनिंग ले। फिर भगवत गीता, परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, फिर वापस ब्रह्म संहिता है कि परम धामम कैसा है, तो गोलोक धामनी निज धामनी, जो आपका निज धाम है, तले चतस्य, उसकी बॉटम में उसके तलवे में क्या है, गोलोक धामनी निज धामनी तले चतस्य क्या क्या है, तो कह रहे हैं देवी महेश हरि धाम शुते शुतेषु। देवी धाम अर्थात ये भौतिक जगत, दुर्गालय दुर्गालय दुखालय जो भी समझिए, गोलोक धामनी निज धामनी तले चतस्य देवी महेश हरि, देवी धाम फिर उसमें सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च महेश धाम अर्थात कैलाश, पीक एंड टॉप ऑफ द कैलाश माउंटेन, देवी महेश हरि धाम उसके ऊपर हरि धाम अर्थात वैकुंठ के अनगिनत करोड़ों करोड़ों ग्रह, देवी महेश हरि धाम शुते शुतेषु ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम, सबसे पवित्र आप ही हैं, पवित्रम परमम भवान, भवान माने सर्वश्रेष्ठ, कोई नहीं आपके समान, पुरुषम आप पुरुष हैं, पुरुषम शाश्वतम इटर्नल, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि सबके आदि अनादि गोविंदमादि पुरुषम, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम अजन्मा अजम विभुम, विभु माने विश्वव्यापी विराट अनंत, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो कोई कहेगा हाँ अर्जुन तो उनका दोस्त है ना, मित्र है, इसलिए ऐसी इतनी बखान कर रहा है। इसलिए तुरंत अर्जुन जी प्रमाण दे रहे हैं कि मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, आहु सत्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं कि आप पर ब्रह्म है, आप परम धाम है, आप पवित्र हैं, आप पुरुष हैं, आप शाश्वत हैं, आप दिव्य हैं, ये मैं अकेला नहीं मान रहा हूं। देखिए कौन कौन कह रहा है ये बातों को, आहु सत्वाम ऋषय सर्वे, सारे इस समय के जो महान ऋषि हैं या पहले के हैं उन सब ने यही कहते आए हैं और आज भी कह रहे हैं। कौन कौन, आहु सत्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि, देवताओं में जो ऋषि हैं, देवर्षि नारद तथा देवताओं के ऋषि नारद तथा असीतो देवलो व्यास, असीत मुनि देवल मुनि व्यास मुनि स्वयं चैव ब्रवीषि में, अभी कुछ देर पहले आपने भी कहा। फिर कहते हैं सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। चतुश्लोकी भगवत गीता है ना, सारी भगवत गीता इन तीन श्लोकों में आ गई, संपूर्ण भगवत गीता। सर्वम एतद् ऋतम मन्ये, हे भगवान कृष्ण आपने जो सब कुछ कहा वो सब कुछ मैं मानने के लिए तैयार हूं। सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे केशव, आपने जो कुछ भी मुझे बताया वो सब कुछ मैं मानने के लिए तैयार हूं, फिर भी नहीं ते भगवान व्यक्ति, फिर भी आप भगवान हो, कैसे भगवान हो, कितने भगवान हो, कब से भगवान हो, कब तक भगवान रहोगे, विदुर देवान दानवा कोई नहीं जानता। कैसे जानेंगे एको अपयसो रचयिन तुम जगदंड कोटिम। वो अकेला अनेक ब्रह्मांडों की रचना करता है। यक्षतिरस्ति जगदंड चयायदंत। फिर वो उस ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है, जितने ब्रह्मांड बनाए। चलो एक आदमी अनेक फैक्ट्री खोल सकता है, लेकिन हर एक फैक्ट्री में बॉस की कुर्सी पर एक ही समय कैसे बैठेगा वो। लेकिन ये आप तो बैठ जाते हो। एको अपयसो रचयिन तुम जगदंड कोटिम यक्षतिरस्ति जगदंड चयायदंत। उसके अंदर आप ऊपर से बैठ जाते हो और आधे ब्रह्मांड को अपने पसीने से, जो दूध रूपी पसीना है, उससे भर देते हो और फिर अनंत शेष नाग पे सो जाते हो। और फिर उस ब्रह्मांड का संचलन करने के लिए अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। वो जो ब्रह्मांड है उसके एक एक कण कण अणु परमाणु में भी आप प्रवेश कर जाते हो परमात्मा के रूप में। दिमाग काम करता है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। दिमाग ही काम नहीं करेगा, ये कैसे हो सकता है। एक आदमी ने करोड़ों ब्रह्मांड की रचना की। एको अपयसो रचयिन तुम जगदंड कोटिम यच्छतिरस्ति जगदंड चयायदंत। फिर उसमें प्रवेश कर गया और फिर प्रवेश करने के बाद अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। एक एक धूलिकण जिसने बनाया उसी के अंदर वो वापस प्रवेश कर गया और फिर भी यहां खड़ा रह के बांसुरी बजा रहा है। ये कैसे बिग मैजिशियन कैसे समझे इस बात के ऊपर। अगर ज्ञान मार्ग के द्वारा, ध्यान दीजिए, ज्ञान मार्ग के द्वारा जो यहां पर वर्णन है, ध्यान मार्ग के द्वारा, राजयोग के द्वारा, किसी तरह इस विषय पे बल दे दे के दिमाग घिस डाले, जैसे चंदन का लकड़ी घिस रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टेंशन बढ़ जाएगा ना। कैसे सोचेंगे आप, एक आदमी ने करोड़ों ब्रह्मांड बनाया, हर ब्रह्मांड में वो प्रवेश कर गया, फिर हर ब्रह्मांड को आधा भर के वो अनंत शेष पे सो गया और फिर उसके बाद उस ब्रह्मांड में जितने धूलिकण हैं उस हर एक धूलिकण में वो परमात्मा बन के प्रवेश कर गया और सब संचलन होने लगा। ग्रह नक्षत्र तारे दिन रात हफ्ता 15 दिन महीना सालों साल संवंत सदी युग युग युगा अवतार मनवंतर अवतार। फिर वापस युग अवतार लेते, मनवंतर अवतार लेते, गुणा अवतार लेते, कला विशेष अवतार लेते। वही आदमी है क्या, ये वही पुरुष है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कभी स्ट्रोक आ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक, माइग्रेन हो सकता है, खत्म हो जाएगा वो। इसलिए वेद भी कहते हैं नेति नेति, पता नहीं कौन है ये, क्या यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो जहां वेदों का अंत होता है वहां भक्ति की शुरुआत होती है। इसलिए कहते हैं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जहां वेदों का अंत हो जाता है, वेद नहीं समझ पाते हैं तो हमारी क्या दिशा है, कैसे हो सकता। इसे श्लोक का समर्थन देखे पीछे आता है फिर बात हो। यह कारणार नव जले भजति स्म योग निद्रा मनंत जगदंड सरोम कूप आधार शक्तिम अवलंब्य पराम सुमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम। कैसे होता है, बोले कारण समुद्र में सो जाते हैं और एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड बनता है और हर एक ब्रह्मांड को आधार शक्ति जो है या पावर जनरेशन है स्टेशन वो वही है। और वो कैसे हुआ, कैसे हुआ वो, ऐसे कारण समुद्र में तो सो गए, कारण समुद्र में सो गए और एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड बाहर आया। यह कारणार नव जले भजति स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सो गए निद्राम। फिर अनंत जगदंड अनंत कोटि अनगिनत ब्रह्मांड बाहर आ गए। निद्रामनंत जगदंड सरोम कूप आधार पुरु ब्रह्मांड, ऐसे नहीं कि वो बैंग थियरी जो न्यूटन और डार्विन की जो थियरी है, बैंग धार धूर धार धड़ाम फुड़ुम ऐसे कुछ नहीं हुआ, ऐसे कुछ नहीं हुआ, कोई बैंग थियरी नहीं हुआ, सभी का सुचारू ढंग से संचलन होने लगा अपने अपने स्थान पर। तो सबको पावर स्टेशन जनरेशन कहां से आया, आधार शक्तिम अवलंब्य पराम सुमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कैसे हुआ, तो बोले वो सो गए और एक उनका उच्छ्वास बाहर आया, यस्य कनिष्वसित कालमथावलंब्य, एक उच्छ्वास बाहर निकाला, एक्सेलिंग कार्बन, एक्सेलिंग कार्बन, उच्छ्वास बाहर आया, बस उसी से सब कुछ हो गया। यस्य कनिष्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कैसे हुआ, तो बोले वो एक महाविष्णु है, वो महाविष्णु कारण समुद्र में सो गए और उन्होंने जो उच्छ्वास बाहर निकाला एक्सेलिंग, उसमें ये सब हुआ। वो एक्सेलिंग का टाइमिंग समझिए, उसका जो टाइमिंग है हमारे अपने लेवल से समझ सकते हैं, दूसरे लेवल से क्या समझेंगे। तो इस ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार हम उसका टाइम समझने की प्रयास कर सकते हैं, चेष्टा कर सकते हैं, समझ नहीं सकेंगे, प्रयास करेंगे कोई नहीं समझ पाएगा, गिनती नहीं होगा, समझेगा क्या। अभी हमारे ब्रह्मांड में हमारे मनुष्य में इस पृथ्वी लोक के मनुष्य प्राणियों में जब 8 अरब जब 8 अरब 64 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं इस पृथ्वी लोक में, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड में इस पृथ्वी लोक में जब 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जब बीत जाते हैं तो हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन। तो ऐसे जो ब्रह्मा जी का एक सप्ताह कितना दिन होता है, एक महीना कितना दिन होता है, एक साल कितना दिन होता है, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, और ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल जीते हैं तो ब्रह्मांड का महाप्रलय होता है, सब कुछ नाश हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरे ब्रह्मा आते हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, फिर छठे, ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मा आ जाते हैं। थोड़ा समझिए, दिमाग को जोर दीजिए, ब्लड प्रेशर होगा सबको, लेकिन हरे कृष्ण बोलने से ये ब्लड प्रेशर चला जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। अरे भाई थोड़ा गिनती तो करो कोई, कि जब 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हमारे मनुष्यों का बीतने पर ब्रह्मा जी का, हमारे ही ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, तो उनका एक साल, उनका 100 साल, ऐसे 100 साल जीने वाले ऐसे करोड़ों ब्रह्मा आके चले जाते हैं, करोड़ों, करोड़ नहीं करोड़ों ब्रह्मा आके चले जाते हैं। वो जो महाविष्णु ने एक सांस बाहर निकाला, वो जो टाइम हुआ उतना ही, और जब सांस लिया, इनहेलिंग ऑक्सीजन, जब सांस अंदर लिया, धार 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 धार, जो ब्रह्मा जी जी रहा है नहीं जी रहा है सब कुछ अंदर, तुम भगवान के पेट में, विश्वेश विश्वरूप मधुसूदन है, विश्वेश विश्वरूप मधुसूदन है ना, गोविंद केशव जनार्दन वासुदेव, विश्वेश विश्व मधुसूदन विश्वरूप। तो विश्वेश विश्व मधुसूदन विश्वरूप, क्यों ये नाम है भगवान के, विष्णु सहस्त्र नाम है, सारे नाम आते, क्यों नाम है, सारा विश्व सारा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया जाता है, और इसलिए कन्हैया तैने माटी खाई ना मैया मैंने माटी ना खाई, कन्हैया तैने माटी खाई ना मैया मैंने मिट्टी ना खाई, कन्हैया झूठ बोल रही हो ना मैया झूठ ना बोल रही हूं मैं, कन्हैया मुंह खोल के बता आ यशोदा गिर गई, सारा ब्रह्मांड जिसके पेट में उसने बाहर मुंह में दिखा दिया, वो गिर गई मूर्छित होकर। हैं? और हम लोग क्या सीखते हैं? ये कृष्ण कथा छोड़ के एक बेवकूफ बना सीखते हैं। और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या एक पोएट्री है ना अंग्रेजी की, बेवकूफ पोएट्री, ईटिंग सुगर नो पापा। क्या क्या है वो, भूल गया मैं, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो दांत जो ब्रश नहीं किया है वो दिखता है, जबान साफ नहीं किया कफ दिखता है, मांस दिखता है, और कुछ नहीं दिखता है। तो पापा की डांट पड़ती है जॉनी को। लेकिन यहां यशोदा मैया बेहोश हो गई, क्योंकि जिसके पेट में अनगिनत विश्व समाया है वो मुंह में दिखा दिया। कृष्ण कुछ भी कर सकते ना, उनके लिए कोई बहुत बड़ा स्क्रीन या जनरेटर या क्या बोलते वो फिल्म डालते हैं प्रोजेक्टर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग रोज गाते ना, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय प्रीतिमन्ति, और तो अपनी एक इंद्रिय से कोई भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। तो विश्वेश विश्व मधुसूदन विश्व रूप श्री पद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्करक्ष नारायणाच्युत नरसिंह नमो नमस्ते, है ना। तो एको अपयसो रचयन्तुम जगदंड कोटिम यच्छक्तिरस्ति जगदंड चया यदंत अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम यस्य कनिष्व शित काल मथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाका विष्णुर महान। ऐसे जो महाविष्णु है, अभी ध्यान दीजिए, ऐसे जो महाविष्णु नारायण है, ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण की एक छोटा सा कला विशेष अवतार है, कृष्ण की एक छोटी सी शक्ति है। अब बोल, यस्य कनिष्वशित कालमथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर महान। जो ऐसे महान विष्णु है, महाविष्णु जो ऐसे महान विष्णु है, विष्णुर महान सह्य कला विशेषो, कृष्ण की एक विशेष कला है, बस और कुछ नहीं। तो वो कृष्ण कैसा है? ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, दिमागी काम नहीं करेगा। तो ऐसे जो भगवान है कि एक जीव की शुरुआत होती है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना, वहां से जो उसकी यात्रा शुरू होती है, तो सर्वधर्मान परितज्य माम एकम शरण व्रज, वो एंड नहीं है, वहां से तो दौड़ लगानी है। इसीलिए गीता का जहां अंतिम उपदेश समाप्त, वहां भागवतम शुरू। सच्चिदानंद विग्रह भागवतम में है, तो वहां से भागवतम शुरू होगा। तो ये ऐसे जो कृष्ण हैं, ऐसे योगी ध्यान योग, राजयोग, या और क्या है, ज्ञान योग, ज्ञान योगी ध्यान योगी राजयोगी कैसे समझेंगे? तो इसको क्या करना है, उपाय क्या है? समझना नहीं है, समझ के भी समझना नहीं है, क्योंकि ज्यादा समझने से तकलीफ हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, भक्ति, भक्ति माने शरणागति। तो ऐसे जिन्होंने शरणागति स्वीकार ली है, क्योंकि कितना सोचेंगे इस विषय पर, सोच ही नहीं पाएंगे, गिनती नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, विश्वास से शरणागति होकर भक्ति शुरू करनी है। भागवतम में लिखा है, वेद में लिखा है, ब्रह्म संहिता में लिखा है, गीता उपनिषद में लिखा है, हमें स्वीकार है, हम मानते हैं कि कृष्ण भगवान है। क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई साधन ही नहीं है कि इसको और प्रूफ करें या और जानें। तो उसको शरणागति, ऐसे जो शरणागत हुए हुए जो साधु हैं, ध्यान दीजिए अभी आगे, ऐसे जो शरणागति किए हुए हुए जो साधु हैं, जिन्होंने हजारों जन्म में ऐसी शरणागति लेकर तपस्या की, ऐसे तपस्वी साधु दंडकारण्य में प्रभु श्री राम के जब दर्शन करते हैं, ऐसे शरणागति वाले साधु, अनेक जन्मों में जिन्होंने ऐसी शरणागति के साथ भगवान का भजन किया, तपस्या किया, ऐसे शरणागति साधु जब दंडकारण्य में प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं वनवास के दरमियान, और भगवान श्री राम के मुखारविंद, भगवान के बपू, उनके शरीर का श्री अंग का सौंदर्य, रूप माधुर्य एवं रूप लावण्य। देखिए दो शब्द हैं, रूप माधुरी और रूप लावण्य देखकर वो साधु आकर्षित हो गए, वो वैरागी संत आकर्षित हो गए। सुंदर वस्तु सुंदर व्यक्ति के लिए क्या कहा जा सकता है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और अधिक सुंदर है तो रूप लावण्य। विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री या पुरुष, उसके लिए अधिक से अधिक ये कह सकते हैं कि रूप लावण्य, लेकिन रूप माधुरी शब्द कभी नहीं आता है विश्व के लोगों के लिए, भौतिक देह के लिए, भौतिक शरीर के लिए कभी यह नहीं आएगा कि रूप माधुरी है। परंतु प्रभु श्री राम का मुखारविंद कैसा है, रूप लावण्य और रूप माधुर्य को देखकर दंडकारण्य के ऋषि आकर्षित हो गए और प्रभु को श्री राम को घेर करके कहने लगे, हे श्री राम, यदि हमारी तपस्या से, हमारी साधना से, भजन से आप संतुष्ट हैं तो आप कृपा निधान, दया निधान, आप हम पर एक अनुग्रह कीजिए। क्या अनुग्रह? हमें आपका हाथ पकड़ने दीजिए, हमें आपकी आपके कमर में हाथ डालकर चलने दीजिए, हमें आपको आलिंगन करने दीजिए, हमें आपको चुंबन करने दीजिए। प्रभु, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। शायद कोई सोचे कि यह भौतिक जगत की वासनाएं इच्छाएं, हमें नहीं पता आप कितनी लंबी सफर है। देखिए है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, वहां से लेके दंडकारण्य में साक्षात प्रभु के दर्शन कर रहे रूप माधुर्य का, रूप लावण्य से भी श्रेष्ठ रूप माधुर्य का दर्शन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम अपने आपको रोक नहीं पा रहे हैं। शायद ये हमारी अनुचित मांग है या वासनाएं हम पर आ गई, हमें नहीं पता, प्रभु हमें ये करने दीजिए। तब श्री राम कहते हैं थोड़ा सा सबर कीजिए, थोड़ा सा रुकिए, अब इस बार मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं, अगली बार थोड़े दिनों के बाद मैं जब पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आऊंगा तब आपकी ये इच्छाएं पूरी होगी। थोड़े दिन और तपस्या कीजिए, थोड़े दिन और शुद्धिकरण की प्रक्रिया कीजिए। अरे वो चतुर्विधा भजन्ते माम जना से लेके दंडकारण्य में दर्शन हो रहे, फिर भी प्रभु कह रहे हैं शुद्धिकरण की प्रक्रिया थोड़े दिन और कीजिए। और अगर हम अंदाज से गिनती करें तो थोड़े दिन कितने थे पता है? कम से कम 8.5 लाख वर्ष। वो थोड़े से दिनों की शुद्धिकरण प्रक्रिया 8.5 लाख वर्ष से भी अधिक, क्योंकि श्री राम जब आए और वनवास हुआ, लंका दहन हुआ, रावण वध हुआ, राम राज्य हुआ, उसके बाद 11,000 वर्षों तक राम राज्य हुआ, उसके बाद कई लाखों वर्ष तक लव कुश ने किया और उनके 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 वंशज उनके वंशज उनके वंशज उन्होंने राज किया, और उसके बाद त्रेता युग समाप्त हुआ, उसके बाद द्वापर युग की अवधि है 8,64,000 वर्ष। तो प्राय वो संध्या बेला थी, संध्या द्वापर का अंत और कलयुग का प्रवेश, बीच में संध्या समय था, और ऑलरेडी कलयुग आ चुका था, द्वापर ऑलमोस्ट एकदम खत्म हो चुका था, पूरा हो चुका, नहीं तो थोड़ी महाभारत होता, भाई भाई में झगड़ा हो तो कलयुग में होता है। तो 8,64,000 वर्ष, 11,000 वो, और फिर राम के बाद कुछ लाख वर्ष और त्रेता युग के, तो ऑलमोस्ट 9-9.5 लाख। प्रभु ने क्या कहा? थोड़े दिन और। ऐसे जो साधु थे उन्होंने ब्रज में जन्म लिया, उन्होंने गोपांगनाओं के घर में गोपांगनाओं के घर में जन्म लिया, उनको कहा गया साधन सिद्ध भक्त। और जब मां पृथ्वी को, धरती मां को बहुत कष्ट हुआ दानवों का, राक्षसों का, और उन्होंने देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की अगुवाई में जाकर क्षीर सागर के किनारे जो प्रार्थना की, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, पुरुष सूक्त मंत्रों से, देवता पुरुष सूक्त मंत्रों से कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, तो जब उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना की तब भगवान ने क्या कहा? अब मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, आप सभी देवता जो हैं वो सब व्रज में यदु भोज वृष्टि वृष्णि अंधक ऐसे कुल में जन्म लीजिए। यदु भोज अंधक वृष्णि इन इन वंशजों में जन्म लीजिए। और कृष्ण ने किस वंश में जन्म लिया? यदु वंश वृष्णि वंश में जन्म लिया। यदु वंश में नंदराय जी थे, वृष्णि वंश। इसलिए भगवत गीता के तीसरे श्लोक के लगभग 40वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण को वार्ष्णेय कह के बुलाता है। वार्ष्णेय भगवत गीता में कृष्ण को दो बार वार्ष्णेय कहा गया है 700 श्लोकों में। वार्ष्णेय ऐसे ढूंढना चाहिए, मधुसूदन कितनी बार बोला, केशव कितनी बार बोला, ऐसे भगवत गीता को मत देना चाहिए पूरा, तब मजा आती है भगवत गीता समझने में, पढ़ने में, बोलने में, सुनने में। तो कृष्ण को 700 श्लोकों में दो बार वार्ष्णेय कहा गया पूरी भगवत गीता अर्जुन के द्वारा। तब उन लोगों का जन्म हुआ साधन सिद्ध। कुछ लोग गोलोक वृंदावन से कृष्ण के साथ आए नित्य सिद्ध, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है ना कृष्ण को कैसे कैसे कृष्ण के साथ व्यवहार करना। कृष्ण के समधी, कृष्ण के पड़ोसी, कृष्ण के मित्र, कृष्ण के सखा, कृष्ण की सखी, ये सब तो बन गए। हमें पर पता नहीं है, मोको पता नहीं है भैया कि कृष्ण को क्या भावे हैं, पता ही नहीं है। तो जो नित्य सिद्ध पार्षद कृष्ण के साथ आए हैं वो उनके साथ सहज व्यवहार करेंगे, जिसे हम कहते हैं भक्ति, विशुद्ध भक्ति। वो नित्य सिद्ध पार्षद कृष्ण के साथ जो सहज व्यवहार करेंगे वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति। उसको देख के ये साधन सिद्ध भक्त सीखेंगे हाँ कृष्ण के साथ ऐसे करना। इसलिए नित्य सिद्ध पार्षद कृष्ण के साथ आते हैं। कुछ देवताओं को आदेश हुआ कि आप जाइए ब्रज में जन्म लीजिए कृपा सिद्ध, या कोई जीव को भी भगवान डाल देते हैं, जा भाई अब तू ब्रज में जा, मैं आने वाला हूं तू जा। तो कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध ऐसे लोग कृष्ण के साथ खेलते हैं, कृष्ण को घूंसा मारते हैं, कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं, कृष्ण के हाथ से खींच के खा लेते हैं, या कृष्ण के लिए अपनी गोपी मैया से कुछ कह के कुछ विशेष बना के ले जाते हैं। इन लोगों के भाग्य की क्या बात करें, प्रभुपाद जी कहते हैं उसको समझाना बहुत कठिन है। दो लाइन में तात्पर्य पूरा करें। प्रभुपाद जी के ग्रंथों से जो कुछ पढ़ा, भक्तों से, साधुओं से, वैष्णवों से जो सुना, वही बताने का प्रयास किया। मैं तो और क्या वर्णन करें कि उनके सौभाग्य का वर्णन क्या कि जो ऐसे ध्यानी ज्ञानी और राजयोगी भी कृष्ण के चरण कमलों की धूलि का एक कण का आस्वादन मात्र नहीं कर सकते। अब प्रयास तो किया, आप कितना अंदर लेके समझे हो मुझे नहीं मालूम, कितना हजम। तो ये यहां पर कहने का तात्पर्य है अघासुर वध में। कितने वर्ष के हैं कृष्ण अघासुर वध के समय? 5 वर्ष। पूतनावध बकासुर वध में आ गया उसका वर्णन। 5 वर्ष की कृष्ण की आयु है, उसे क्या कहते हैं? पौगंड अवस्था। पौगंड अवस्था अर्थात 6 से 10 वर्ष। ये सब याद रखना चाहिए। रस आता है और इन्हीं रसों को इकट्ठा करेंगे करेंगे तब हमारा भी एक दिन ऐसे ब्रज में जन्म होगा। ऐसे से कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार हरे कृष्ण। कोई त्रुटि या दोष रह गया हो तो कृपा करके क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है? अलाउड है 9:15 बजे तो बाद में यहां से उठने के बाद, ताकि मंदिर का जो कार्यक्रम है दिनचर्या वो उचित समय पे होती रहे। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।